ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। राष्ट्र आज संविधान अंगीकार किए जाने की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। आज ही के दिन संविधान को अंगीकार किया गया था। सरकार ने इस अवसर पर आज से एक वर्ष तक चलने वाले समारोह की शुरुआत की है। ये समारोह 26 नवंबर 2025 तक देश भर में आयोजित किए जाएंगे। आज संविधान दिवस के अवसर पर दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगी। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और दिल्ली स्थित दूतावासों के प्रमुख भी उपस्थित होंगे। संविधान दिवस पर एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। इस अवसर पर दो पुस्तकें भी जारी की जाएंगी। इसके अतिरिक्त संविधान का संस्कृत और मैथिली संस्करण भी जारी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सर्वोच्च न्यायालय में संविधान दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जा रहा है। श्री मोदी न्यायपालिका की वार्षिक रिपोर्ट भी जारी करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश भी उपस्थित रहेंगे। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आयकर विभाग की पैन परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 1,435 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पैन के दूसरे चरण में मजबूत साइबर सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। श्री वैष्णव ने यह भी स्पष्ट किया कि मौजूदा पैन नंबर बने रहेंगे। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने अरुणाचल प्रदेश के शी योमी जिले में हियो पनबिजली परियोजना के लिए 1,939 करोड़ रुपए के निवेश को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि 240 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाली इस परियोजना से 1,000 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। इससे अरुणाचल प्रदेश में बिजली आपूर्ति को बेहतर करने और राष्ट्रीय ग्रिड को संतुलित करने में मदद मिलेगी। मंत्रिमंडल की समिति ने अरुणाचल प्रदेश के शियोमी जिले में 186 मेगावाट की टाटो वन पनबिजली परियोजना के लिए निवेश प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। आज से 13वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक जियोस्पेशियल सूचना प्रबंधन एशिया प्रशांत सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। नई दिल्ली में भारत मंडपम में शुरू हो रहे 4 दिन के सम्मेलन में भारत के 120 प्रतिनिधियों सहित 30 देशों के 90 प्रतिनिधि शामिल होंगे। आज राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है। ये दिवस देश में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नई दिल्ली में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम में देश की अर्थव्यवस्था और पोषण सुरक्षा में डेयरी क्षेत्र के योगदान को प्रदर्शित किया जाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह पशुधन तथा डेयरी क्षेत्र के लिए गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को दिल्ली सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शिक्षा संस्थानों में कक्षाओं पर जारी प्रतिबंधों में ढील देने पर विचार करने का निर्देश दिया है। पिछले सप्ताह गंभीर वायु प्रदूषण के कारण विद्यार्थियों को स्कूल और कॉलेज जाने पर रोक लगाई गई थी। न्यायाधीश अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि ऐसे विद्यार्थियों की संख्या काफी अधिक है जिनके घर में एयर प्यूरिफायर नहीं है, इसलिए घर पर रहने वाले बच्चों और स्कूल जाने वाले बच्चों के बीच कोई विशेष अंतर नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि कुछ छात्रों को मध्यान्ह भोजन की सुविधा से वंचित किया जा रहा है और ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए उनके पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। गोवा में चल रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आज 6वें दिन 70 से अधिक फिल्में दिखाई जाएंगी। इनमें इंडिया वोट्स, स्ट्राइड और बियॉन्ड द कोड द इंडियन व्हीलचेयर बास्केटबॉल जर्नी शामिल है। 13 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। आईपीएल 2025 के लिए राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 1,10,00,000 रुपए की कीमत पर अपनी टीम में शामिल किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।